गीता पार्क जो है वो रखा गया था, उसके लिए इनको इतला मिली थी कि जी इन्होंने इसको जो है वेंडलाइज किया है। लेकिन जिस वक्त पैट्रिक ब्राउन के पास और जो पील पुलिस जो थी उससे जब किस्सा सामने लाके बताया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इसको वेंडलाइज नहीं किया गया है और इसको सिर्फ जो है इसकी करेक्शन की जा रही है, लेकिन जिस जगह को हमने डेजिग्नेट किया था और वो कोई ब्लैक साइंस कुछ लगाए थे वहां पे, उसको जो है वो कोई खराब किया गया है, तो उसको अब लेकर गए हैं, तो उसकी अब साइनेज वगैरह ठीक कर रहे हैं और ये और वो तो कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो पैट्रिक ब्राउन की ट्वीट आई थी और कम्युनिटी सर्विसेज एंड कॉमर्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जो ट्वीट आई थी उसमें उन्होंने कहा था जी कि नहीं, इसको तो सिर्फ जो है रीप्रिंट के लिए, क्योंकि नाम चेंज किया है, ट्रॉलर्स पार्क था तो इसका नाम चेंज करने के लिए और चीजें फिक्स करने के लिए इसको कर रहे हैं, बाद में रेनोवेट कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर पैट्रिक ब्राउन साहब ने कहा हाँ हमें पता चला है ये ऐसे हुआ है। तो जब पील पुलिस की आई तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, फिर वेंडलाइजेशन नहीं हुई होगी अगर पील पुलिस कह रही है। बहरहाल इंडिया ने इसके ऊपर जो है बड़ा एतराज किया, उन्होंने कहा भी आपके मुल्क में जो है वो क्या चल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एक दफा जो है 15 सितंबर को जो बैप्स जो स्वामी नारायण मंदिर है उसके ऊपर भी कुछ जो है खालिस्तानी एलिमेंट्स जो है उनका कहना है इंडिया का अलेजली उन्होंने जो है कुछ ग्रेफिटी वगैरह लिखी थी, एंटी इंडिया ग्रेफिटी। तो ये हेट क्राइम्स आपके मुल्क में बढ़ रहे हैं तो इसका आप क्या कर रहे हैं। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिग्न्यू राव जो हैं वो अब एक लेटर लिख रहे हैं जर्मनी को, और उस लेटर के अंदर वो कह रहे हैं जी कि आप जो है जर्मनी जो है पोलैंड को वो करता है 1.26 ट्रिलियन US डॉलर्स, इसलिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपने 6 मिलियन पोल्स को मारा था जिसमें में 3 मिलियन पोलिश ज्यूज भी थे, तो उसके लिए आपने हमारे साथ ना तो कोई बात की थी, ना रेपरेशंस किए थे, ना ही कोई आपने हमको कॉम्पेंसेशन दी थी। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि जो थे जो 1953 की कम्युनिस्ट रूलर्स थे उन्होंने कहा था कि हम अपने ये सारे क्लेम्स ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि जर्मनी ने हमको सब कुछ दे दिया है। असल में हुआ ये था कि 1944 में वॉर्सो के ऊपर जो है वो बड़े जर्मनी ने हमले किए थे और बिल्कुल जो ये कैपिटल वॉर्सो है उसको बिल्कुल रेज कर दिया था, बिल्कुल एक भी इमारत वहां पर खड़ी नहीं रह गई थी और इसमें तकरीबन 200,000 लोगों की डेथ भी हुई थी और 6 मिलियन पोल्स जो हैं उनको भी मारा गया था डिफरेंट इलाकों से पकड़ के, ये कह के कि जी ये ज्यूज हैं, ये वो हैं, ये जर्मनी के खिलाफ काम करें, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, जर्मनी ने सब कुछ दे दिया। लेकिन अब जो ये नेशनलिस्ट लॉ एंड जस्टिस के वालों की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं जी ये डील जो है वो 1953 में बनाई गई थी, ये इसलिए इनवैलिड है क्योंकि उस वक्त हमको चांस नहीं दिया गया था फेयर कॉम्पेंसेशन मांगने का। तो ये राव साहब ने कहा है कि इनके जर्मन काउंटर पार्ट जो हैं लेडी जो हैं अनिला बेयर बुक जो हैं वो कल आ रही हैं पोलैंड के दौरे के ऊपर, तो वो कहते हैं जी जब ये आएंगी तो मैं इनसे बोलूंगा कि हमको आपसे कॉम्पेंसेशन चाहिए 1.26 ट्रिलियन US डॉलर्स की।
ट्रिलियन।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
हाँ जी, पोप फ्रांसिस जो हैं वैसे तो आपको पता है उनकी बीच में मुलाकातें जारी रही हैं जो पुतिन साहब हैं उनके साथ, लेकिन अब आज उन्होंने डायरेक्टली अपील की है पुतिन साहब को कि आप ये जो वायलेंस चल रही है और ये जो डेथ्स बढ़ती जा रही हैं यूक्रेन की वॉर में, इसके लिए वॉर को फौरन खत्म करें। वो कहते हैं कि मुझे हॉन्ट आ रहे हैं, मैं हॉन्ट हो रहा हूं ये सोच के जो रिवर ऑफ ब्लड और टीयर्स जो बहते जा रहे हैं, लोगों का खून बह रहा है, लोग रो रहे हैं, तो ये आप करें। और इसके अलावा जो एनेक्सेशन जो 4 रीजन्स की थी पुतिन साहब ने, उसको भी उन्होंने कहा जी इसको फौरन रोकें क्योंकि ये न्यूक्लियर जो एस्केलेशन है वॉर की उसको वॉर को एस्केलेट करता है, तो ये फौरन आप इसको रोकें। और आज ये अपना एड्रेस कर रहे थे सेंट पीटर स्क्वायर के अंदर जहां पे कि इन्होंने पुतिन साहब को अपील की। इसके अलावा उन्होंने वॉर और डेथ को भी कंडेम किया और एट द सेम टाइम उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब को भी कहा है कि भाई अगर रशिया ने आपको कोई पीस का प्रपोजल दिया है तो आप उनके साथ बैठ के बात करें और फौरन ये जो फाइट है इसको रोकें। तो अब देखेंगे जी क्या करते हैं पुतिन साहब, इनकी बात करते हैं,
इनको भी सुना देंगे।
हाँ हाँ, कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो जिस तरह कनाडा को कहते रहते हैं तुम सही पैसे नहीं दे रहे हो, सही हमारे साथ खड़े नहीं हो, वैसे उनको भी कह देंगे तुम सही नहीं कर रहे हो भाई। ठीक है जी। अच्छा जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज सबसे पहले ये स्टोरी आई थी और बड़ी डिटेल में आई है, जैसे कि माजिद भाई ने भी जिक्र किया ही था कि ये बड़ी जो है ये लिस्ट्रूस की गवर्नमेंट जो है इन्होंने अब अपने जो टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस किए थे वो इन्होंने वापस ले लिया। अच्छा ये हुआ क्या, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी क्या बता रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये स्टोरी बताती है जी कि ये एक इनकी जो थी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी टोरी पार्टी की बर्मिंगम में। अच्छा जी न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस पार्टी के अंदर ये जो है चांसलर ऑफ एक्सचेकर इनके क्वासी क्वार्टेंग जो हैं, क्वासी क्वार्टेंग ने पूरी वो जो टैक्स कट्स की जो हमने दास्तान आपको सुनाई थी लास्ट वीक उसमें इन्होंने कहा था कि जी हम ये सारा कुछ कैसे करेंगे, वो ये अब अपने एनुअल पार्टी में बताने लगे थे और उससे पहले ही अपनी पार्टी को ये कह रहे थे कि भाई यू शुड रैली योर सपोर्ट अराउंड अस एंड द प्राइम मिनिस्टर और ये हमारा बड़ा काम है। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये कई अरसे से ये दोनों जो हैं डी रेगुलेशन और लो टैक्सेस की बात करते थे तो वो कह रहे थे कि ये टैक्सेस हम जो रिच तरीन जो ब्रिटन्स हैं उनके ऊपर हम डाल रहे हैं और बाकियों के ऊपर हम कट कर रहे हैं तो आप इसके साथ हमारे साथ खड़े रहें। अच्छा ये जब बात सामने आई थी तो इसके ऊपर जो है बहुत सारा रिएक्शन आ गया था, वो रिएक्शन जब आया तो जिस वक्त ये एनुअल पार्टी वहां पे शुरू हुई बर्मिंगम में तो लोग सोच रहे थे पार्टी के मेंबर्स भी मीडिया भी बाकी लोग भी कि ये तो अनाउंस करेंगे कि इसको आगे चलाया कैसे जाएगा क्योंकि उस वक्त डिटेल्स नहीं दी थी तो वो पता चला जी कि इन्होंने तो यू टर्न ले लिया है। दस दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया है कि हम ये जो है ये हाई इनकम ग्रुप के ऊपर हम डालेंगे और 45% टैक्स जो है लो इनकम ग्रुप के ऊपर हम स्क्रेप कर रहे हैं और अब ये यू टर्न इन्होंने, तो वो कहते हैं ये इन दोनों के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट वहां पे हुई पार्टी की क्योंकि मीटिंग चल रही थी बहुत एम्बैरेस ये दोनों हुए और अब जो पार्टी है वो सोच रही है कि क्या ये दोनों अपने अपने काम के लिए ठीक हैं भी कि नहीं है। तो ये जो है अब
अभी पहली पहली बात निकली है वहां पर कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का
जी
इन पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक दफा लेके देखा जाए हाँ, लोग क्या
वही,
सोच
वही,
रहे हैं।
वही वो पार्टी सोच रही है कि क्या ये दोनों जो हैं अपने अपने रोल में ठीक हैं भी कि नहीं है
हाँ।
तो ये जनाब बड़ा चेकर जो है अब चल गया। अच्छा जनाब यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो अब बुला सकते हैं जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ट्रंप साहब के जमाने में थे रेक्स टिलरसन, आपको पता है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली किस्म के थे ये, और जो है इनको बुलाया जा सकता है विटनेस बॉक्स पे क्योंकि ट्रायल चल रहा है टॉम बैरक का कि इन्होंने ट्रंप साहब के लिए अनलॉफुली जो फंड रेजर ये करते थे ना ट्रंप साहब के लिए ये बैरक साहब अनलॉफुली इन्होंने एक्ट किया एज अ फॉरेन एजेंट जबकि स्टेट डिपार्टमेंट इनको इजाजत नहीं देता है कि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हों तो आप इस तरह का काम करें। अच्छा जी ये स्यापा क्या था, स्यापा ये था कि जिस वक्त ट्रंप साहब जो थे वो स्टेट डिपार्टमेंट ने ये जो सारी डिटेल्स दी थी उसके मुताबिक ट्रंप साहब जो थे और जो बरक साहब के जो अटॉर्नीज ने भी कहा है कि इनके ऊपर ये केस इसलिए नहीं चलाया जा सकता टॉमस बैरक के ऊपर केस इसलिए कि जिस वक्त ये यूएई की गवर्नमेंट से बेसिकली बातचीत कर रहे थे तो ट्रंप साहब को और स्टेट डिपार्टमेंट को पता था इस सारी चीज के बारे में। अगर उनको ना पता होता और उनको बताए बगैर अगर ये कोई जो आप सो कॉल्ड अलेज्ड फेवर्स आप कह रहे हैं या बेनिफिट्स ये जो यूएई की गवर्नमेंट को दे रहे थे बिटवीन 2016 एंड 2018 क्योंकि इनकी विश लिस्ट में था दुबई के अंदर पॉलिसी पोजीशंस को स्ट्रेंथन करना, तो वो कहते हैं जी कि अगर इनको ना पता होता तो फिर ये आप इसके ऊपर केस चला सकते थे, अभी आप इसके ऊपर नहीं चला सकते हैं। लेकिन जनाब जो यूएस अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा जी कि अंडर फेडरल लॉ इनसे पूछना बहुत जरूरी है रेक्स टिलरसन से कि ये टॉमस बैरक साहब जो हैं वो क्या कर रहे थे, व्हाट ही वाज अबाउट। तो ये अब जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल जो है जनाब केस बन गया है तो अब पता चलेगा कि रेक्स टिलरसन क्या कहने वाले हैं और क्या ये जो है टॉमस बैरक साहब को सजा हो सकती
चाहिए, लाहौर हाईकोर्ट चले जाए,
लाहौर हाईकोर्ट बिल्कुल पायन लाहौर हाईकोर्ट जाओ तुसी तुहानू छुट जाओगे तुसी बिल्कुल तुसी छुट जाओगे। तो बैरक साहब बड़े इंपॉर्टेंट बंदे थे ना, बड़े बिलियनियर थे वो
टॉमस,
राइट हैंड मैन थे और बिलियनियर थे और बड़े इनके लिए फंड रेजिंग करते होते थे तो ट्रंप साहब के लिए
राइट हैंड ऑफ ट्रंप।
तो वो कह रहे हैं जी कि टॉमस बैरक साहब इतने बिलियनियर थे तो यूएई की गवर्नमेंट के साथ ये क्या कर रहे थे हैं, बट यूएई पायन जगह ही ऐसी है हर कोई जाना चाहता है जी। यूएई का था ना हमारा वो जो था पाकिस्तानी आरिफ नकवी उसके साथ सारी दुनिया बिजनेस करना चाहती थी हाँ जी ये। अच्छा जी दिल दुखाने वाली बहुत सारी खबरें हो गई हैं, दूसरा एक ब्रीदर ले लें फिर बुरी खबरें शुरू कर देंगे,
पहले पहले अच्छी वाली सुनाओ।
हाँ वही ना अच्छी सुना दें, एक अच्छी सुना दें। अच्छा जी अच्छी खबर ये है कि आपको पता ही है पेरिस फैशन वीक चल रहा है पेरिस फैशन वीक में जनाब जिस वक्त आया वैलेंटिनो का की बारी, वैलेंटिनो ने जब करना था अपना फैशन जो, तो कहा जा रहा है जो मीडिया यूरोप से जो है इसको कवर करता है वो कहता है जी बटालियंस एंड बटालियंस ऑफ सेलिब्रिटीज जो हैं वो वैलेंटिनो का जनाब अटेंड करने के लिए, वरना दूसरे जो होते हैं वो भी बड़े ब्रांड्स हैं लेकिन कोई दो चार आगे दस बारह, वैलेंटिनो का अटेंड करने के लिए बटालियंस ऑफ सेलिब्रिटीज जिसमें के बड़े बड़े नाम थे जिंडाया, नेओमी कैम्बल, फ्लोरेंस पग, एरिके बाडू, एशली पार्क और इस तरह के जो लोग थे, वो कहते हैं जी हालांकि इतनी तकलीफ हुई सारों को कि जितने भी टॉप वीआईपी गेस्ट थे लमैर का जो वेन्यू था उसके अंदर बहुत ही क्रैम्प होके बैठे हुए थे, इतना बेतहाशा बंदा वहां पे आया हुआ था टिकट लेके, वो भी आप सोचें जरा सिर्फ वैलेंटिनो का शो देखने के लिए, और इसके अलावा बाहर जो था अंदर तो वीआईपीज तंग तंग होके बैठे हुए थे, साढ़ी तरह जो के चौड़े होके रीजन बैठे हुए, और बाहर शदीद बारिश हो रही थी और सारी पब्लिक बाहर घंटों घंटों खड़ी रही क्योंकि वो अपने ये सारे जो थे ये स्टार्स जो थे इनसे मिलना चाहते थे। तो कहते हैं जी ऐसा रेज है ये ब्रांड जो है वैलेंटिनो, क्या बात है जी। ठीक है, अच्छा जनाब हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ही ज्यादा भड़क गई हैं चीजें, उसकी वजह यह है कि एक दुर्गा पूजा चल रही थी वीकेंड के ऊपर और हिंदू महासभा वाले जो हैं उन्होंने ये पूजा दुर्गा पूजा जो है वो निकाली थी, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जब दुर्गा पूजा निकाल रहे थे तो उसको अलेजली रिजेंबल करने की कोशिश की अपनी जो देवी थी महात्मा गांधी से उसको, और उनके चरणों में जो है वो राइफल का निशान बना दिया। हालांकि आपको पता ही है कि हिंदू डीटीज जो हैं उनके चरणों के अंदर कुछ भी नहीं रखा जाता, तो इसके नीचे एक तो उसकी शक्ल महात्मा गांधी से मिला दी और उसके चरणों में जो है राइफल रख दी। तो इसमें मीडिया ने जिस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल यूनिट चंद्रचोर गोस्वामी से पूछा कि भई आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है दुर्गा पूजा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमको गांधी मुक्त इंडिया चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर हमको गांधी का नाम नहीं चाहिए। हालांकि आपको पता ही है कि गांधी जी को वो बापू बोलते हैं, फादर ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कहते हैं जी हम नहीं इसको बापू कंसिडर करते हैं, हम इसको फादर ऑफ नेशन नहीं करते हैं क्योंकि इसने मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया था और गांधी जी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, नेताजी बोस जो हैं वो उनकी और भगवंत सिंह की मौत के लिए, और इसके अलावा जो 30 लाख बंदा जो पार्टीशन में मरा गांधी जी की वजह से मरा। इसके जो ऑर्गेनाइजर थे दुर्गा पूजा के अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो हो रहा था ये रूबी हॉस्पिटल के पास, तो वहां पे काफी ये हंगामा शोर उस वक्त मचा जब लोगों ने रियलाइज किया कि इन्होंने डीटी की शक्ल जो है गांधी जी से मिलाने की कोशिश की है और उसके चरणों में जो है बंदूक रखी है। और इन्होंने कहा इस मौके के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि हमको गांधी का सोशलिज्म या सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए है, ये सब चीजें जो हैं बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी ये अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए गांधी का नाम यूज करते हैं, हम तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इस मुल्क में लाना चाहते हैं ताकि इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, तो हम जो हैं असल में इस मुल्क के यानी आप कह सकते हैं ठेकेदार हैं, तो हमको हम गांधी जी को बापू नहीं मानते हैं, तो ऐसी बातें उन्होंने की। ठीक है जी, अच्छा जनाब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आज न्यूज है और उसके मुताबिक जो फार्मर्स हैं वो वापस आ गए हैं जो अपनी जो एनिवर्सरी मनाने के लिए, आपको पता ही है यहां पे लखीमपुर खीरी के अंदर जो हुई थी डेथ्स हुई थी फार्मर्स की चार फार्मर्स जो थे उनके डेथ हो गए थे, तो वहां पे इन्होंने डिमांड किया था कि जो मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा उनके बेटा जो है उसको पकड़ा जाए, जो कि इवेंचुअली उसको पकड़ा भी गया था, वो जो यहां पर इनका बेटा था आशीष उसको पकड़ा था, क्योंकि क्या हुआ था कि वहां पर जिस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लखीमपुर खीरी में तो वहां पर उसने कोई अलेजली गाड़ी चला के फार्मर्स के ऊपर चढ़ाई जिसमें कि चार फार्मर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो आज फर्स्ट एनिवर्सरी पे ये जो वायलेंस यहां पे हुई थी, यहां पे बहुत सारे लीडर्स आए हुए थे, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और भी बहुत सारे आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो कुछ हुआ लोगों को उसमें जस्टिस मिलनी चाहिए और ये कितनी इंसल्ट है कि जो कल्प्रिट्स जो हैं वो अभी भी जो हैं बाहर हैं और उसमें से एक जो है यूनियन मिनिस्टर का बेटा है, तो ना सिर्फ उसके बेटे को पकड़ा बल्कि उस यूनियन मिनिस्टर को भी पकड़ने की जरूरत थी। भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत, उन्होंने कहा जी कि हम ना तो ये लखीमपुर खीरी का जो हादसा है वो भूले हैं ना ही हम गवर्नमेंट को भूलने देंगे और हम कोई और चीज मानेंगे नहीं गवर्नमेंट की जब तक कि जो यूनियन मिनिस्टर मिश्रा साहब हैं उनको गवर्नमेंट से निकाला नहीं जाता। यहां पे तकरीबन कोई 600 के करीब किसान और लोग और दूसरे आज फिर से जो थे शामिल थे और इसका नाम था कोडियाला घाट जो है उसके ऊपर ये इवेंट हो रहा था जिसपे के चार फार्मर्स जिनकी डेथ हुई उसको ट्रिब्यूट्स पे किए जा रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये इनको आप कल्प्रिट्स को सजा दें। ये जो अभी गौरी साहब ने बताया है कि हमारे जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, तो असल में ये थोड़ी सी मैं इसमें चीज ऐड करना चाहती हूं कि जो पाकिस्तान की जो हमारी एम्बेसी है वहां पे न्यूयॉर्क में, उनसे बार बार लोग पूछ रहे थे कि भई आप बताएं कि क्या बाजवा साहब यहां पे आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन तो रह गए उनकी रिटायरमेंट में, तो आप कह रहे हैं जी कि वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल से मिलने के लिए और एक या दो दिन के लिए नहीं पूरे हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो उसकी क्या चक्कर है। बहरहाल जी पाकिस्तान एम्बेसी के जो ऑफिशियल थे न्यूयॉर्क में वो बिल्कुल या वॉशिंगटन के अंदर जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, जो इनकी काउंसिलेट और एम्बेसी थी दोनों के अंदर, यानी कि जो न्यूयॉर्क में भी और वॉशिंगटन डीसी में भी वहां पर खामोश थे, कुछ नहीं बताया। लेकिन दूसरे कुछ ने बताया और फिर यही हुआ एग्जैक्टली कि फ्राइडे के दिन जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा साहब वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां पे ना सिर्फ ये कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों से मिलेंगे बल्कि यूनाइटेड नेशंस के अफसरों से भी मिलेंगे। इन्होंने अपना लास्ट विजिट जो किया था यूनाइटेड नेशन इसमें यूएस का वो 2019 में किया था, लेकिन इनके विजिट ने खुद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी जो है सवाल उठाए गए हैं और उसकी वजह से बहुत ही और ज्यादा बेचैनी फैल गई है, क्योंकि लग रहा है कि जैसे ये अभी भी अपनी पोजीशन से नहीं जाएंगे, तो उसके लिए और जो है वो कंसर्न्स बढ़ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं जी वो वीकेंड के ऊपर अलजजीरा को एक इंटरव्यू दे रहे थे और अलजजीरा का बहुत अच्छा ये इनका फिर से इंटरव्यू था। जजीरा का जो इंटरव्यूअर था उसने बहुत ज्यादा इनको प्रेस किया और प्रोब किया इनको जो है बीबी जरदारी को और उनको कहा नहीं तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, और इन्होंने बहुत कामली और बहुत स्ट्रेस करके अपने सवालों के जवाब दिए। अच्छा जी वो सवाल क्या था जिसके लिए वो बार बार प्रेस कर रहा था, वो बार बार प्रेस कर रहा था कि ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है उसमें तुम किसके साथ हो, क्या तुम वेस्ट के साथ हो, तो बार बार बीबी जरदारी ने कहा कि हम बिल्कुल साइड्स नहीं लेंगे और उसकी वजह है, और फिर उन्होंने डांट दिया उसको इंटरव्यूअर को, उसने कहा तुम मुझे क्यों बार बार प्रेस कर रहे हो जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो है किसी की साइड नहीं लेगा, और उसकी वजह मैं तुम्हें उसकी वजह बताता हूं कि मैं बार बार तुम्हें यह क्यों कह रहा हूं कि पिछले 20 साल से हम अफगानिस्तान की वॉर में इन्वॉल्व थे एंड वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड, तो हम अब पाकिस्तान किसी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो इसलिए हम कोई भी साइड नहीं लेंगे। वो कहते हैं जी कि अभी काबुल जो है फॉल ऑफ काबुल अभी हुआ ही था तो उसके मंथ्स जस्ट मंथ्स आफ्टर दैट जो है ये इनकी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो गई थी, तो हमने यही बताया है लोगों को कि हम पीसफुल लोग हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और हम डायलॉग चाहते हैं और हम कॉन्क्लूजन्स चाहते हैं, तो इसलिए जो है मुझे बार बार इस क्वेश्चन पे प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू पाकिस्तान पोजीशन इन यूक्रेन रशिया वॉर इज वेरी वेरी क्लियर, वी डोंट वॉन्ट टू टेक साइड्स। तो बहुत अच्छा ये उनका इंटरव्यू था। हाँ जी शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने इमरान खान की जो स्मीयर कैंपेन सो कॉल्ड वो कह रहे हैं जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये बिल्कुल स्टेट इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और इसके लिए इनके ऊपर जो है वो लॉ के मुताबिक जो है वो केस चलाए जाएंगे और लॉ से अबव कोई भी नहीं है। पायन फिर थोड़े केस के विच की किया जाए, दो दिन पहले तुसी थोड़े केस होना सी फिर तुसी प्राइम मिनिस्टर बन गए, हुण थोड़ी जिहड़ी है भैन उसनू भरादी बेटी नू भी छोड़ दिता है। बहरहाल जी वो कहते हैं लॉ से अबव कोई नहीं है, लॉ के मुताबिक जो है इमरान खान साहब से वो किया जाएगा। ये कॉन्स्टेंटली अक्यूज कर रहे हैं और एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, कोई साइफर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उसमें जो है कॉन्स्पिरेसी नहीं है, तो इसलिए ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और इनसे इसी तरह से निपटा जाएगा। है जी सिंध की जो होम मिनिस्ट्री है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा जी कि चूंकि पुलिस वाले जो हैं वो सारे फ्लड रिलीफ में लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और बहुत ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो हैं 3 महीने के लिए कराची और हैदराबाद डिविजन्स के अंदर जो हैं पोस्टपोन किए जाएं। हमको 39,293 के करीब पुलिसमैन चाहिए और उसमें से कुछ हमारे पास तो हैं लेकिन देर इज स्टिल अ शॉर्टफॉल ऑफ 16,786 और जिस वक्त तक इनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा और ये सारे लोग जो हैं रूरल सिंध और डिस्ट्रिक्ट से आएंगे जब तक वो नहीं होंगे जो कि अवेलेबल नहीं होंगे 3 महीने के लिए, तो इसलिए हम जो है इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, ओके ओके जी। ये मरियम नवाज की भी आपने खबर सुन लिया कि आज उनको पासपोर्ट वापस कर दिया गया। इसमें थोड़ा सा सिर्फ मैं ऐड करना चाहती हूं कि मरियम नवाज के जो आज काउंसिल थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने आज बड़ा जोर दिया लाहौर हाई कोर्ट को और उन्होंने कहा जी कि पिछले चार साल से कॉन्स्टेंटली ये केस इसके ऊपर चल रहा है और इसका आपने पासपोर्ट भी लिया हुआ है और कोई रेफरेंस जो है इसके अगेंस्ट नहीं आया, ना आप इसको प्रूव कर सके चुके हैं, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उनकी मूवमेंट जो कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और अगर इसको प्रोलॉन्ग किया जाए तो दिस विल बी टेंटामाउंट टू मिसयूज ऑफ लॉ। तो उसके ऊपर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि हमें कोई एतराज नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है इनका पासपोर्ट इनको वापस करने के लिए। जाहिर है जी सेंटर चाचा बैठे हुए हैं तो उसको की एतराज होना है, तो आज इनको दिया गया तो जी आज इन्होंने बड़ी जो है खुशी मनाई गई। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने जो एक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो कि मुनस लाई PMLQ के जो लीडर है उनके खिलाफ था, उसको भी वापस ले लिया है। वो भी केस उनके ऊपर FIA ने किया था और इन्होंने कहा था जी FIA ने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनके आज काउंसिल ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और इनका मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये किसी ऐसी चीज में नहीं है, हालांकि क्योंकि NAB और बाकी सब अदारे इनको जो है क्लीन चिट दे चुके हैं तो इसलिए आप जो है इनको छोड़ें, तो इसलिए जी मुनस लाई साहब को भी छोड़ दिया गया है। आज एक बहुत ही हैरत अंगेज आज एक इंटरव्यू आया है मुफ्ता इस्माइल साहब का, उन्होंने PTI की गवर्नमेंट को तो कोसा ही कोसा कि इनकी वजह से सारी कुछ जो है खराबियां मुल्क के अंदर आई हैं। आपने एग्री किया था कि जी आप सेल्स टैक्स 17% रेज करेंगे, फिर आपने उसको जीरो पे रिड्यूस कर दिया, फिर आपने कहा था जी कि पेट्रोल लेवीज हम इंक्रीज करेंगे 4 to 30 rupees, फिर आप उसको जीरो पे लेकर आएंगे, तो खराबियां तो सारी आपकी पैदा की हुई हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी ये सारी रामलीला की कहानी सुना के इसके बाद इन्होंने कहा जी कि जो हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इन्होंने जो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस, तो ये बगैर IMF की इजाजत के बगैर ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी वेरी रेकलेस जो कि इनको नहीं करना चाहिए। तो पहले तो जी इमरान खान साहब ने रगड़िया, फिर अपनी गवर्नमेंट ने भी रगड़िया।
अच्छा
जी, हाँ जी, इस तरह। अच्छा जनाब, आज पाकिस्तान जो है कि फॉरन ऑफिस जो है उन्होंने आज कैटेगोरिकली जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर के जो कमेंट्स हैं उनको जो है रिजेक्ट किया। आज पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा कि एस जयशंकर साहब जो के बात कर रहे थे वडोदरा के अंदर, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि मुझे दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क दिखाओ पाकिस्तान के अलावा जो के टेररिज्म को जो प्रैक्टिस करता हो और फैलाता हो, फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर कहा कि ये बेसलेस एलिगेशंस पाकिस्तान के ऊपर लगाने के बजाय आप जो खुद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर चला रहे हैं इन पर्टिकुलर और मुसलमानों के खिलाफ इन जनरल इन इंडिया, उसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है। आप क्यों कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन अंडर द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नहीं दे रहे हैं? आप जो इंडियन लीडर्स हैं आप ऑब्सेस्ड हैं कॉन्कॉक्ट करने के लिए फैक्ट्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब आप मिसलीड नहीं कर सकते। 24 घंटे आपकी फिंगर्स जो हैं वो पॉइंटिंग आप कर रहे हैं नेबर्स के ऊपर, जबकि आपके अपने ये क्रेडेंशियल्स शो करते हैं कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, और आपकी जो सेफ्रॉन टेरर है ऑर्केस्ट्रेटेड बाय BJP एंड RSS उससे अब दुनिया सारी वाकिफ है। पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है और उसके काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन हैं जो टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म उसकी जो तारीफ है सारी दुनिया ने की है, और एफर्ट्स जो है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने है, तो इसलिए हमारे पे इतराज करना आप बंद करें।
सही,
ठीक है जी। अच्छा जनाब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब आज मासूम बड़े भड़के हुए नजर आए, इसलिए कि वो कहते हैं जी कि मैं जब भी कभी सच बोलता हूं या किसी के हक में बोलता हूं दुनिया मेरे खिलाफ हो जाती है। पिछले दिनों में बहुत सारे एक्टर्स ने कमाल आर खान के ऊपर केसेस बनाए हुए थे, तो इनको जब पकड़ के लेके गए, क्योंकि ये जो है वो मूवीज के ऊपर और एक्टर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म देते हैं, तो इनको पकड़ लिया गया था, इनको बहुत सारे एक्टर्स ने एतराज किए थे, तो उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैं उनके जो खराब कमेंट्स होते हैं उनको मैं एंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि हर किसी को इतना भी एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में क्या कुछ नहीं होता वो सब कुछ हमें पता है इंडस्ट्री में क्या होता है, और जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं वो अननोटिस नहीं जाती हैं, ये बंदा सिर्फ उसके बारे में बात कर लेता है। तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये मैंने बातें तो मुझे मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा तक को जो है थ्रेट्स आने लगे थे, तो विच इज वेरी बैड कि हम अगर किसी पे बात करें तो हमारे पे थ्रेट्स नहीं ऐसे आने चाहिए। फराह खान साहब ने जी आज जो लेटेस्ट एक एपिसोड थी गौरी खान का जो शो आता है ड्रीम होम्स, जिसमें कि वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर जाके और वो उनके घरों को डेकोरेट करती हैं बिकॉज शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, उसके ऊपर बात करते हुए फराह खान ने कहा कि जो आज भी मुझे तुमसे प्यार है गौरी खान, क्योंकि यू आर स्टिल अ मिडिल क्लास गर्ल जो कि जिसके के अंदर वो फूंक हां जो है इतने बड़े स्टार की बीवी होने के बावजूद और बॉलीवुड में रहने के बावजूद नहीं आई है, तुम बड़ी सिंपल हो और मैं जब तुमसे पहली बार ही मिली थी विच वॉज अबाउट 32 years बैक इन 1990s तो मुझे लगा कि तुम मेरी जैसे कोई ओल्ड कॉलेज या स्कूल फ्रेंड हो एंड यू आर स्टिल द सेम मिडिल क्लास पंजाबी गर्ल एंड दैट्स वट आई लव अबाउट यू. तो उन्होंने कहा जी ये ऐसी लड़की है जिसका दिमाग बॉलीवुड के इतने बड़े शहनशाह का की बीवी होने के बावजूद और उधर रहने के बावजूद खराब नहीं हुआ, ये बड़ी सिंपल है. करीना कपूर साहबा जी अपने छोटे से बेटे 1 साल के बेटे जहांगीर के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे थी मगर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और डर गई इसलिए कि लोग उनसे सेल्फीज लेने लगे और एक लड़के ने तो उनके कंधे पे हाथ रख के सेल्फी लेने लगे तो वो बहुत डर गई कि शायद ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए. लेकिन बहरहाल एन उसी वक्त जी उनके बॉडीगार्ड्स आ गए और उनको तितर बितर किया. फिर एंड जनाब बहुत ही हैरत की बात है, आपको पता है कि जो मेन एक्यूज्ड है सिद्धू मूसे वाले के केस में दीपक टिंकू टीनू दीपक टीनू जो है वो आपको पता है किसके पास था, मानसा सीआईए टीम और सीआईए के जो इंचार्ज थे प्रितपाल सिंह उनके प्राइवेट उसके अंदर कार के अंदर था और उनके ऑफिशियल होम के अंदर रह रहा था हैं और वो उनकी ऑफिशियल कार यूज कर रहा था, यानी कि उसको इतनी सिक्योरिटी दी हुई थी कि उसको इधर उधर जाने नहीं हिलने नहीं दिया जा रहा था, उसको जो है वो रखा हुआ था. तो उसने कहा जी कि मुझे एक फोन दो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है. उसको फोन दिया गया तो उसने कहा मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में कमरे में बात करना चाहता हूं. जब उसको छोड़ा थोड़ी देर के बाद जब पुलिस आई तो दीपक टीनू साहब जो है वो भाग चुके हुए थे वहां से. तो अब लोग जो है बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीआईए का जो इंचार्ज है वो उसके अगर घर से और जो है कोई अगर इस तरह का एक्यूज जो है वो गायब हो सकता है, खासतौर पे जो सिद्धू मूसे वाले के जो फैंस हैं वो बड़े भड़के हुए हैं पंजाब में कि ये कैसे भागा, इसको किसने भगाया, कौन मिला हुआ था, ये कैसे उस इतने सिक्योर घर में से कैसे भागा. इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है जी उसने अब एक प्रोब बिठाई है क्योंकि वीकेंड के ऊपर एक चल रहा था फुटबॉल का मैच, उसके अंदर हो गई जी स्टैम्पीड, उस स्टैम्पीड में डेथ हो गई,
125 पीपल डाइड
323 पीपल गॉट इंजर्ड. तो उसके ऊपर अब जो इनके सिक्योरिटी चीफ हैं महफूद एमडी उन्होंने कहा जी कि हम इसके ऊपर बिठाएंगे प्रोब बिठाएंगे. ये हंगामा उस वक्त हुआ जब जो है होम फैंस अरीमा एफसी वो भाग के कंजूरहान स्टेडियम के अंदर आ गए और इनकी क्योंकि लॉस हुई थी 3-2 से जो इनका राइवल्स हैं प्रेसबिया सुरैबाया के साथ, तो तब तो उसकी वजह से अब ये एक प्रोब बिठाई गई है जो कि वो कहते हैं कभी भी नहीं हुई है. लुई हैमिल्टन 7-time F1 जो हैं विनर हैं उनको जी कहा इजाजत दे दी गई है कि ये जो तुम नोज में पिन और ये मांगते हो ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, लेकिन इनकी जो टीम है मर्सिडीज उसको 24,500 का फाइन दिया गया है क्योंकि उन्होंने कहा जी FIA ने जो कि गवर्निंग बॉडी F1 की कि आपने हमको बताया नहीं, बताते तो हमें कोई एतराज नहीं होता. एंड जनाब पाकिस्तान की जो लॉस जो लूज किया पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ उसके ऊपर PCB के जो चेयरमैन है रमीज राजा साहब उन्होंने कहा जी मेरे लड़के आखिरी वक्त तक खेले हैं और ये जो है 80% ऑफ इट्स मैचेस इन 12 मंथ्स ये जीते हैं तो इसलिए मुझे उनके ऊपर बड़ा फख्र है. लोगों ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि फुल स्टेडियम जो थे वो भरे हुए थे और लोगों को जो सिक्योरिटी की वजह से प्रॉब्लम हुए उसके लिए हम सॉरी कहते हैं. एंड एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज अबाउट शोएब अख्तर बड़े भड़के हुए हैं, वो कह रहे हैं ये बाबर एंड को जो है ये इस तरह से वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती. मैं पहले भी बड़ी दफा कह चुका हूं कि सकलैन मुश्ताक साहब सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा लास्ट मंथ मैंने कहा था कि सिलेक्टर मोहम्मद वसीम सही तरह से सिलेक्शंस नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप फिर वर्ल्ड कप के ऊपर सही परफॉर्मेंस नहीं करेंगे. ये वीडियो बना रहे थे अपनी यूट्यूब चैनल के लिए.
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड बकिया न्यूज. इंशाल्लाह ताला कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि 5:30 बजे हम अपनी खबरें शुरू कर दें. ऊपर नीचे होता रहता है बड़े शहरों में, नॉट टू वरी अबाउट इट. एंड बस अब तो टाइम रह गया सिर्फ आपसे अल्लाह हाफिज कहने का.
थैंक यू माजिद भाई, आई सी यू टुमारो
इंशाल्लाह. इंशाल्लाह ताला आई सी यू टुमारो एंड कल
इंशाल्लाह. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम है वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ स्वर्ग यही नर्क यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम है वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ अपने निशान इसके सिवा जाना कहाँ जी चाहे जब हमको आवाज दो हम है वही हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ
तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, ना हो सच में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे जगवाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, करम पंप हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी
हो सके न किसी के हम मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बना काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू पाए प्यार का मन में छुपाकर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है तेरा रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल,
प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल,
प्यार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल,
चांद
चमकेगा कभी,